फरवरी को हम लोग श्री नित्यानंद त्रयोदशी मना रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के प्रथम अध्याय में नित्यानंद प्रभु के विषय में वर्णन किया गया है। सहजई सहज रूप से नित्यानंद कृष्ण प्रेम उद्दान, निरंतर कृष्ण प्रेम के आवेश में लिप्त रहते हैं। प्रभुर आज्ञाय कोयला यहां तहां प्रेमदान, श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा अनुसार यहां वहां वो प्रेम का दान करते हुए घूमते हैं, भटकते हैं। चैतन्य सेवा चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य ये भक्ति करे से मोर प्राण। नित्यानंद प्रभु का उपदेश क्या है? जिन जीवों का दर्शन करते हैं नित्यानंद प्रभु, उन जीवों को आह्वान करते हैं, चैतन्य गाओ चैतन्य सेवा, लाओ चैतन्य नाम, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। चैतन्य ये भक्ति करे से मोरा प्राण, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेगा वही मेरे प्राण है। अर्थात प्रचार का अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला इत्यादि का प्रचार करना, उनके महिमा गान करना, स्वयं स्वार्थ पूरित भाव से अपना ही गुणगान करना नहीं। चैतन्य ये भक्ति को रे सही मोरा प्राण। एयरपोर्ट पे मैं जा रहा था, अचानक एक सज्जन मुझे पीछे से बुलाए, स्वामी जी रुकिए रुकिए। मैं रुक गया, मेरे पास आके कहते हैं भगवत गीता है क्या? मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, मंदिर में है। वो कहते हैं मैं अभी लगभग 80 वर्ष का हो गया हूं, सोच रहा हूं गीता पढ़ना स्टार्ट करूं। स्वामी जी ये सही उम्र है ना गीता स्टार्ट करने की? मैंने कहा आप करते क्या है सर? वो कहते मैं CA हूं। मैंने कहा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोले नहीं, कंप्लीट आराम। तो कई बार लोगों को लगता है कि जब उस आयु के हो जाओ तभी आध्यात्म आरंभ करो। मैं जब मंदिर में ज्वाइन हुआ था तो कुछ समय के बाद एक दूसरा ब्रह्मचारी ज्वाइन हो गया, तो उसके पिताजी आके मुझसे झगड़ा करने लगे, ये मेरे बेटे की उम्र है क्या ज्वाइन होने की? वो जब मेरे उम्र का होगा तब ज्वाइन करना चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है बेटे को जाने दो, आप आ जाओ। घबरा गए, बोलते हैं घर पे पूछ के बताता हूं। अगले दिन आए, बोले बेटे को ही रहने दो। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपिमृतोपि सा। अरे धनंजय उसका ट्रांसलेट करो उनके लिए। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में देवहूति माता कहती है किसी का कर्म धर्म में, धर्म वैराग्य में और वैराग्य भक्ति में परिवर्तित न हो तो उसका क्या लाभ। सायं भगवता नूनं वंचितो मायया दृढ़ं, यत्तत् विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। सायं भगवता नूनं, यह स्पष्ट है कि माया मुझे बुरी तरह भगवान श्री कृष्ण के आसक्ति से वंचित कर दी। देवहूति कहती है मुझे कपिल देव का साक्षात सानिध्य प्राप्त हुआ, वो कपिल देव जो मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते थे, जो भक्ति का दान दे सकते थे। लेकिन मैंने ऐसे पति कपिल देव का आश्रय लिया केवल इंद्र तृप्ति के लिए। तो इसलिए सत्संग हम सभी को प्राप्त होता है, लेकिन उस सत्संग में हम किस तरह भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करें, ये नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि सत्संग में हो तो निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, गुणगान करो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, श्रवण करो, उनकी सेवा में रत रहो। जब मन भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में आविष्ट रहेगा, तब जाकर हम कुसंग से मुक्त होंगे। आमन स्तरित तोमार इह आगमन, परमो दयालु तुमी पतित पावन। रामानंद राय कहते हैं, हे प्रभु, आप पतितों के पावन हो, हम जैसे अधम जीवों का उद्धार करने यहां प्रकट हुए हो। पतित कौन है? वेद निष्ठा मध्य अर्धे कवेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाने। पतित वो जो जानते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं, तार्किक रूप से शास्त्र के सारार्थ को समझते हैं, उचित अनुचित दोनों का भेदभाव भली भांति जानते हैं, लेकिन जब उनकी इंद्रियों के सामने कोई आकर्षक विषय वस्तु नृत्य करने लगती है, वो अपने विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते और उस इंद्रिय विषय के आक्रमण के वशीभूत आकर हथियार डाल देते हैं, पराजय स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप का आत्मसमर्पण कर देते हैं, इंद्र तृप्ति में पूरी तरह लिप्त हो जाते हैं। यह है माया का प्रभाव। मोहंत स्वभाव एई तारिते पामर, निज कार्य नहीं तबु जातार घर। महात्माओं का स्वभाव ही है कि वो सत्संग लोगों में वितरित करते हुए जाते हैं, जिससे मन के अंदर जो हृदय दौर्बल्य है, वीकनेस ऑफ द हार्ट। हृदय दौर्बल्य का अर्थ क्या है? हमारे अंदर वो पर्याप्त मात्रा में संकल्प शक्ति नहीं बन पाती जिससे हम विषयों के आक्रमण को रोक सकें। तो इसलिए इसको कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। माया का प्रभाव तो सबके ऊपर है, लेकिन जब माया का आक्रमण हो, क्या हम माया के उस आक्रमण से बचने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति, अपने विवेक शक्ति को प्रयोग कर पाते हैं कि नहीं? जब तक वैष्णवों के संग में वैष्णव कृपा नहीं मिलेगी, तब तक हम शक्तिशाली रूप से माया के इस आक्रमण से नहीं बच सकते। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, कैलिफोर्निया की बात है, पैसिफिक ओशन के सुंदर दृश्य को भक्त लोग देख के प्रभुपाद को कहे, प्रभुपाद जी समुंदर कितना सुंदर लग रहा है। प्रभुपाद ने कहा, हां बेटा, दूर से सुंदर ही लगेगा, पास जाओगे तभी पकड़ के डुबाएगा। फिर प्रभुपाद ने कहा, माया भी ऐसी है समुंदर की तरह, दूर से बहुत आकर्षक लगेगी, पास जाओ तो चपेट लेगी। जगन्नाथपुरी की यात्रा में हम लोग गए थे, तूफानी लहरें चल रही थी और राधानाथ महाराज अंदर स्नान करके करके निकल नहीं रहे, तो उनके सेवक गए उनके पास स्विमिंग करते हुए, बोले महाराज जी सब प्रतीक्षा कर रहे, बाहर नहीं आ रहे। महाराज ने कहा, समुद्र की लहरें इतनी तेज हैं कि गमछा चला गया मेरा, बाहर कैसे निकले, लोग कैमरा लेके खड़े हैं। तो जब दूसरा गमछा जाके दिया तो बाहर आए, बाहर आके बोले, अंदर गया था गौड़िया सन्यासी बन के, बाहर निकलता नागा बाबा बन के, अनाउंसमेंट कर दो कोई अंदर नहीं जाएगा। आज बहुत समुंदर तीव्र है। अनाउंसमेंट कर दिया, सब लोग फिर डिसअपॉइंट हो गए, अंदर नहीं गए, लेकिन एक व्यक्ति बड़ा ही चंचल था, वो कहता मैं जाऊंगा। माया क्या चीज है, समुंदर क्या चीज है, हम तो बचपन से ही समुंदर में खेलते आए हैं, समुंदर हमारा मित्र है। कुछ लोगों की आदत ही होती है अनाउंसमेंट के ठीक विपरीत काम करने में, उनको बड़ा हायर टेस्ट मिलता है। बगावत करने में उनको बड़ा आनंद आता है। तो घुस गए अंदर, समुद्र की लहरें खींचने लगी उसको। थोड़े समय के बाद उसको समझ में आ गया कि सीधा अन्य लोगों की सुगम यात्रा होगी। अभी उसने अपना सारा सामर्थ्य, सारी शक्ति, तैराकी की उस्तादी सब लगा दी, कुछ नहीं हो रहा था। समुद्र के सामने कौन जीतेगा, समुद्र खींचे जा रहा है अंदर उसको। जब उसको देखा कि भाई अंतिम क्षण आ रहा है, दोनों हाथ ऊपर उठाए और भक्त लोगों को पुकारने लगा। भक्त लोग जो तट पे थे उनको लगा हरि बोल बोल रहा है, वो भी हाथ उठा के बोले हरि बोल हरि बोल। अरे किसी ने कहा भैया उसका चेहरा देखो, वही हरि बोल होने वाला है। तो भेजे उसको पकड़ के लेके आए मेरे सामने, मैं वहां खड़ा था, पेट से पानी निकाला, नलिया था जो गया था अंदर लाइफ गार्ड। तो मैंने कहा भाई देख, नलिया ने तेरा जान बचाया, इसको कम से कम कुछ पैसे दे दे। वो 150 रुपये निकाल के दिया। मैंने कहा जान बचाई, 500 तो दे दे यार। वो बोलता नहीं, राधेश्याम प्रभु के बुक में पढ़ा है डिस्कवरी और सेल्फ, शरीर का कॉस्ट 150 ही रुपया है। मैंने कहा यार कमाल है, फिलोसफी का क्या प्रयोग किया कंजूसी में। और ये स्टैटिस्टिक्स के पूरे विश्व में हर साल जो लोग मरते हैं, जिनकी मृत्यु होती है पानी के अंदर डूबने के कारण मृत्यु, अधिकांश लोग जो डूब कर मरते हैं वो एक्सपर्ट स्विमर ही डूब के मरते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो बहुत कम मात्रा में डूब कर मरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उतरते ही नहीं पानी में। पानी में डूबने के लिए भी तो योग्यता चाहिए। जिसको तैरना नहीं आता उसको समुद्र में उतरने के लिए निमंत्रण दो तो बोलेगा नहीं, आप जाओ, आप मजा करो। समुद्र की लहरें अपने चरणों को चूम ली, उसी से हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार माया नम्र और नवसिखिया को नहीं पकड़ती। माया की लहरें उस्ताद को डुबाएंगी। जब लगने लगता है मैं तो उस्ताद हूं, कृष्ण भक्ति में उस्ताद हूं, ये सेवा में उस्ताद हूं, जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है तब माया उसकी उस्तादी का पंक्चर करने बराबर ऐसा अस्त्र डालती है कि वो सोच भी नहीं सकता। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यय है भगवान की माया शक्ति, बहुत खतरनाक है, कोई उसको समझ नहीं सकता। श्लोक तो आप 2 मिनट में याद कर लोगे, दैवी एष गुणमयी गुणमयी मम माया दुरत्यया 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 बोलते रहोगे, नीचे से धरती खिसका लेगी माया, और दुरत्या दुरत्या बोलते बोलते डूबोगे अंदर। तो इसलिए यहां पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ऐ मतलों के चैतन्य भक्ति लो याइला, दीनहीन निंदक सबारे निस्तारीला। कलयुग के जीवों का उद्धार करने श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे औदार के मूर्तिमान स्वरूप हैं जो हर जीव का उद्धार करने के लिए तैयार है बिना किसी योग्यता का, स्पष्टीकरण लेते हुए। चैतन्य भक्ति लाओ याइला, कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कीजिए। दीन हीन निंदक सबारे निस्तारीला, दीनहीन निंदक सभी का श्री चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ होइला विस्तार। श्री चैतन्य चरितामृत प्रथम ग्रंथ नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु की लीला और गुणों का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत से पूर्व ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य भागवत, जिनके लेखक का नाम है श्री वृंदावन दास ठाकुर। वो स्पष्टीकरण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी। लोगों ने प्रश्न उठाया होगा, वैष्णव समुदाय में प्रश्न उठा होगा कि भाई चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लेकर जब एक पूर्व ग्रंथ इतने अव्वल दर्जे का, हर प्रकार के व्याकरण और अलंकार से युक्त, जब वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही यह वर्णन कर दिया जिसका नाम है श्री चैतन्य भागवत, फिर ये चैतन्य चरितामृत लिखने की क्या आवश्यकता है आपको? तो कोई भी लेखक लेख लिखने से पूर्व उसके तर्क को प्रस्तुत करेगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं, इस ग्रंथ की आवश्यकता क्यों है। तो कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, चैतन्य चंद्रेर लीला अनंत अपार, अनंत है अपार है, वर्णिते वर्णिते ग्रंथ होइला विस्तार। वर्णन करते करते चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बड़ी विस्तारित हो गई। विस्तारित क्यों हो गई? नित्यानंद लीला वर्णन होइला आवेश, चैतन्येर शेष लीला रहिला अवशेष। श्रील वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के इतने बड़े भक्त थे, श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य मनोरम लीलाओं का वर्णन करते करते उनका मन इतना आविष्ट हो गया, भाव भोर हो गए, ऐसे भावावेश में आकर श्री नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। ग्रंथ बड़ा विस्तारित हो गया। नित्यानंद लीला वर्णन होइला आवेश। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पश्चात की लीलाएं अभी तक आरंभ भी नहीं की। आदि लीला भी हो गया, मध्य लीला भी हो गया, अंत लीला भी हो गया चैतन्य भागवत का, और श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास तक भी नहीं आए। चैतन्य शेष लीला रहिला अवशेष, तो चैतन्य महाप्रभु की शेष लीलाएं रह गई। तेहो अति कृपा कैला आज्ञा कैला मोरे, गौरांगेर शेष लीला वर्णी भारत तोरे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं ब्रज के सभी वैष्णव भक्तों ने मुझ पर बड़ी कृपा की, सभी लोग आके मुझसे निवेदन किए कि हे कविराज, श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के पश्चात की लीलाओं को लोगों के सामने प्रकट कीजिए, वैष्णव समुदाय ने इन लीलाओं की कथा अभी तक श्रवण नहीं की। चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार, तेहो ठुइला रघुना तेर कंठे, ताहा किछु जे सुनिलो ताहा इहा विस्तारिलो, भक्तगण दिलु भेटे। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये सभी लीलाएं रत्नों की भांति स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हृदय के अंदर स्थित थी, वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में वो प्रकट हुई। तेहू ठुइला रघुनाथेर कंठे, दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर जब श्री चैतन्य महाप्रभु की उन लीलाओं का विस्तृत वर्णन किए, उस वर्णन को सुनने के श्रोतागणों में कविराज गोस्वामी भी थे। ताहा किच्छु ये सुनिलू तोह इहा विस्तरिलू, भक्त गण दिलू एई भेटे, भक्त गण दिलू एई भेटे, ये मैं भक्तों को भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। मोरे आज्ञा कोरिला सबे करुणा कोरिया, तो सबारे बोले लिखी निर्लज्ज होइया। अब सब वैष्णव ने मिलकर आदेश किया तो हम भी निर्लज होके तैयार हो गए लीला करने लिखने के लिए। जब आपको कोई सेवा प्राप्त होती है, ये न सोचो कि मैं अपने पूर्व कर्मों के आधार पर, मैं अपने प्रतिभा और गुणों के आधार पर इस सेवा को सिद्ध करूंगा। ये कृष्ण के द्वारा दी गई सेवा है, ये केवल कृष्ण की कृपा और अनुमति से हम पूर्ण कर सकते हैं। ये सेवा एक संपत्ति है। पाया यार आज्ञा धन, ब्रजर वैष्णव गण, वंदो सबार मरे मुहरिदास, चैतन्य विलास सिंधु, कल्लोलेर एक बिंदु, ताहा कणा कोहे कृष्णदास। कहते हैं हमें ये आज्ञा धन प्राप्त हुई ब्रज के वैष्णवों ने और हरिदास पंडित जी ने, ये आज्ञा रूपी धन दिया है। इस आज्ञा धन को प्राप्त करके हम अपनी सेवा आरंभ कर रहे हैं। चैतन्य बिलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं एक विशाल सागर में अनंत कोटि लहरों की भांति है। उन अनंत कोटि लहरों में एक लहर, उस लहर का एक कण, उस कण को मैं विस्तारित करके ये चैतन्य चरितामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अन्यथा श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत लीलाओं का दूर दूर तक कोई वर्णन संभव नहीं। ताहा कणा को हे कृष्णदास, इसलिए कहते हैं श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, जार स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। श्री रूप और रघुनाथ के चरणों में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य, इतना बल है कि केवल उन चरणों का स्मरण करने मात्र से हर प्रकार की भौतिक दिव्य, हर प्रकार के आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भौतिक इच्छाएं नष्ट होती हैं। गुरु परंपरा की कृपा से, गुरु कृपा के, गुरु परंपरा की कृपा और आज्ञा से ये आध्यात्मिक दिव्य इच्छाएं और सेवा को संपूर्ण करने का संतोष प्राप्त होगा, केवल अपने प्रयासों से नहीं। शिल प्रभुपाद जी 18 से 22 वर्ष के नौजवान युवक और युवतियों को लेकर इस्कॉन को एक वैश्विक स्वरूप दिए। ऐसे नवयुवक, ऐसी नवयुवतियां जिन्होंने कॉलेज का ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा किया था। प्रभुपाद जी ने अपने दो युवती कन्याओं को जयपुर में भेज दिया, मंदिर शुरू करो, उम्र 18 साल, अमरीकी नव युवतियां। उन्होंने बड़ा अच्छा सत्संग प्रोग्राम, पंडाल प्रोग्राम अरेंज किया। प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। किसी ने संकल्पना नहीं की थी कि 18-19 वर्ष की अमरीकी नव युवतियां भारत में आकर जयपुर जैसे एक आध्यात्म में रचा पचा शहर के अंदर इतना भव्य सत्संग आयोजित कर पाएंगे। सत्संग के पश्चात प्रभुपाद जी जयपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के साथ बैठे हुए थे। ये दो युवतियां जिन्होंने प्रभुपाद जी का इस पंडाल प्रोग्राम का आयोजन किया था वो भी वहीं थे। तब प्रभुपाद कहने लगे सब उद्योगपतियों को इन दो युवतियों की ओर संकेत करते हुए, देखो हमारी कितनी जवान लड़कियां कितना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किए। तो एक उद्योगपति बोलता है, स्वामी जी कीर्तन बीर्तन तो ये लोग कर लेते हैं, फिलॉसफी का कोई अता पता नहीं इनका। प्रभुपाद ने कहा, क्या कहते हो, हमारी ये दो युवतियां पूरा फिलॉसफी जानती हैं। और प्रभुपाद टर्न किए और उसमें से एक युवती का नाम कौशल्या, बोला कौशल्या पूरा उपनिषद जानती है, सुनाओ इनको पूरा उपनिषद। अब कौशल्या को केवल ईशो उपनिषद का 5 श्लोक मालूम था और प्रभुपाद ने कहा पूरा सुनाओ। और प्रभुपाद ने चांस भी नहीं दिया, ये नहीं कहा कि तुम सुनाओगे क्या, प्रभुपाद ने डिक्लेयर कर दिया सुनाएंगी है। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, जब तक चौथी श्लोक पे वो आई उसका हृदय धक-धक करने लगा कि 5वें श्लोक के आगे तो मैं अटक जाऊंगी, पर्दाफाश हो जाएगा, प्रभुपाद की मानहानि हो जाएगी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे ही 5वां श्लोक सुनाए प्रभुपाद ने कहा बस इसका मतलब तुमको सब पता है। तो वो उद्योगपति कहते हैं, लेकिन स्वामी जी ये आपकी अमेरिकी लड़की ने श्लोक तो सुनाया लेकिन उसका संस्कृत प्रोनंसिएशन बराबर नहीं था, संस्कृत का जो प्रोनंसिएशन है ना वो ठीक नहीं था। प्रभुपाद ने कहा इसका रिनंसिएशन कितना बढ़िया है, देखो इतनी भरी जवानी में अमेरिका के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर सनातन धर्म का प्रचार करने भारत में आए हैं, आप क्या कर रहे हो। प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास बोगी में थे, अचानक एक परिवार घुस गया, 4-5 लोग थे उसमें, और प्रभुपाद बोले आशीर्वाद आशीर्वाद, स्वामी जी आशीर्वाद, स्वामी जी आशीर्वाद। तो प्रभुपाद मुड़े और तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज बैठे थे। प्रभुपाद बोले मैं आशीर्वाद दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। वो बोलते स्वामी जी बाद में आते हैं। वहीं से निकल गए। तो इसलिए यहां पर मोरे आज्ञा कोरिला सबे करुणा कोरिया ता सबारे बोले लिखी निर्लज्ज होया। मुझे आज्ञा प्राप्त हुई इसलिए हम निर्लज होकर ये लिखने लगे। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे मदन गोपाल गेला आज्ञा मांगी बारे। और जब मुझे ये आज्ञा प्राप्त हुई तो हम मदन गोपाल जी के पास गए और फिर हम क्या करने लगे, वृंदावन दासेर पाद पद्म कोरी ध्यान तारा आज्ञा लैया लिखी जाहते कल्याण। कविराज गोस्वामी कहते हम वृंदावन दास ठाकुर का ध्यान करते हुए, मदन मोहन का आशीर्वाद लेते हुए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से जिन्होंने मुझे आदेश किया वृंदावन जाने के लिए ये चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। तो ये संपूर्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंतर्गत नित्यानंद प्रभु की कृपा सन्निहित है। अगर नित्यानंद प्रभु आदेश नहीं करते तो कविराज गोस्वामी वृंदावन नहीं आते, और वृंदावन नहीं आते तो रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण नहीं करते, नहीं श्रवण करते तो हम सभी के सामने ये ऐतिहासिक ग्रंथ चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत नहीं कर पाते। शेष लीलार सूत्रगण कोरी किच्छु विवरण इहा विस्तारिते चित्त होए ठाके जदि आयु शेष विस्तारी बालीला शेष जदि महाप्रभुर कृपा होए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आप सभी के जीवन में एक ऐसी संपत्ति है जो मेरे जीवन में नहीं, वो क्या, समय, काल, आयु आपके पक्ष में है। मैं 95 वर्ष का हो गया हूं, आज रात्रि को सोऊंगा तो कल अरुणोदय की वेला का दर्शन करूंगा कि नहीं कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो समय प्राप्त हुआ है उसको हल्का मत लो, हर एक क्षण बहुमूल्य है। इस मायावी जंजाल से बचाने के लिए भगवान हर प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्वतमैर महतभिर अहम् तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निशेवयैव। अवंती ब्राह्मण संन्यास लेने के पश्चात कह रहे हैं, मैं अपना तन मन धन सभी भगवान के ऊपर आश्रित करके उनकी सेवा में रत हूं, और इसलिए कहते हैं परात्मनिष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाए होए संसार तारण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? एक ही कारण से, एक ही तात्पर्य था संन्यास लेके श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में बसना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था संन्यास लो, ब्रज में जाओ, संकल्प सिद्ध करके संन्यास लिया था। हम सभी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जीवन में बनाते हैं, उन योजनाओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के सामने हमारी योजनाएं पिघलने लगती हैं, जर्जर होने लगती हैं, तब उत्साह क्षीण होने लगता है कि हाय ये मेरी योजना का बैंड क्यों बज रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। लोग हमेशा सुनना चाहते हैं, हम मंदिर में गए, प्रार्थना किए, भगवान ने इच्छा पूरी की। ये स्टोरी लोगों को बहुत पसंद है। सुदामा जी गए भगवान के पास, कंगाल थे और सीधा करोड़पति बन गए। बोलते हाँ भक्ति बहुत बढ़िया है। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट था, दिन भर प्रचार ही करता रहता था मेडिकल कॉलेज, उसको बोलता था भाई पढ़ाई भी कर ले, कल पेशेंट भी देखना है, पेशेंट सामने आएगा तब किताब नहीं निकाल सकता। बोलता अरे कृष्णा है ना पास कराने। तो मैंने कहा इतना विश्वास? बोला हाँ आपका ही तो लेक्चर सुना है मैंने। मैंने कहा यार फेल होगा तो मेरे ऊपर डाल देगा। एग्जाम के एक दिन पहले खड़ा होकर प्रार्थना किया जा रहा था गोपीनाथ के सामने, आधा घंटा प्रार्थना किया, मैं घबरा गया। मैं बोला यार कल एग्जाम है, यहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है? बोल रहा मैं गोपीनाथ जी को बोल रहा हूँ कि पूरा कैंपस जानता है कि मैं हरे कृष्णा का भक्त हूँ और मैं हरे कृष्णा का प्रचार करता हूँ, तो मैं गोपीनाथ जी को कह रहा हूँ कि हरे कृष्णा आंदोलन का हमारे कॉलेज में भविष्य आपके हाथ में है। मैंने कहा वाह रे वाह, क्या चैलेंज दिया भगवान को। अगले दिन एग्जाम था, दो महीने बाद रिजल्ट आया, पास हो गया वो। किसी ने कल्पना नहीं की थी वो पास होगा। जिस दिन पास हुआ रिजल्ट आया, मैं उस दिन शाम को प्रोग्राम के लिए गया था, और उस हॉस्टल में मेरे प्रोग्राम में 5-7 लोग बैठते थे मेरे लेक्चर में। लेक्चर में 7-8 लोग बैठते थे, प्रसाद में 50 आते थे। कई लोग तो लेक्चर के बीच में दरवाजा खोल के देखते और बोलते थे अरे खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक। उनको लगता था मैं मानो मैं उनके और प्रसाद के बीच बाधा हूं। उस दिन लेक्चर में 50 लोग बैठे, मैं रूम नंबर चेक किया सही जगह आया हूं क्या, इतना तो अपना कभी डिमांड था ही नहीं। तो बोले इतने लोग कहां से आ गए? तो आप लोग क्यों आए? मैंने पूछा। बोलते रिजल्ट आया ना आज, और वो लड़के का नाम लिया जो पास हो गया। बोले वो पास हो सकता है मतलब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने ही चाहिए, नहीं तो कैसे पास होगा। तो इसलिए हम सभी अपनी अपनी योजना बना सकते हैं। तो मैंने उस लड़के को कहा भाई तू यूजी में तो पास हो गया, अब उसका पीजी का भी एडमिशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ वो उसके कारण भी कई लोगों को सदमा लग गया कि यार ये न केवल पास हुआ पीजी का एग्जाम भी उसको मतलब पीजी का भी एडमिशन मिल गया। हरे कृष्ण करते करते हम लोग सर फोड़ रहे थे किताब के ऊपर, हमारा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा देख भाई अंडर ग्रेजुएशन में तो भगवान ने तेरा बेड़ा पार कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में कृष्ण के ऊपर इतना लोड मत डालना, खुद भी थोड़ा पढ़ लिया कर। पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने अच्छे से पढ़ाई किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लाया हो। तो इसलिए इस प्रकार की कथाएं लोग बहुत पसंद करते सुनना कि जिसका पास होने का चांस ही नहीं था वो हरे कृष्ण किया, हो गया उद्धार। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि संपत्ति को बढ़ाना और विपत्ति को घटाना हमारी सेवा साधना और संबंध का मूल पर्याय या लक्ष्य नहीं है। हम लोग की भक्ति का मूल लक्ष्य क्या है कि हर परिस्थिति में हम भगवान की सेवानिष्ठ रहे। परात्म निष्ठा मात्र वेश धारण मुकुंद सेवाए होए संसार तारण। मुकुंद की सेवा संसार का उद्धार। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके बस प्रभु की सेवा करने के लिए वृंदावन की ओर जा रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु की योजना थी। महाप्रभु की इच्छा योजना प्लान क्या था, कहां जाना? वृंदावन। नित्यानंद प्रभु एक गांव वाले लड़के को अलग से बुला के बोलते हैं, बेटा चैतन्य महाप्रभु इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से आते हुए आपसे पूछेंगे वृंदावन का रास्ता कौन सा है। तो वृंदावन का रास्ता ये है, लेकिन तुम यहां मत दिखाना, बंगाल की ओर दिखा देना, ऐसा है। तो वो लड़का भी तैयार था। चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते जब आए उस लड़के के पास, पूछे वृंदावन का रास्ता क्या है, वो लड़के ने यूं दिखा दिया नित्यानंद प्रभु के कहने पर। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते कीर्तन करते करते पहुंच गए, बंगाल में घुस गए, गंगा जी के तट पे आ गए शांतिपुर में, और गंगा जी के अंदर छलांग लगा दिया सोच के यमुना है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम के भावावेश में स्नान करते करते जा रहे थे, अचानक वहां से नौका में अद्वैत आचार्य आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत को देखा, बोला अद्वैत वृंदावन आए हो, मुझे नहीं पता था आप वृंदावन आओगे। अद्वैत कहते हैं प्रभु ये वृंदावन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन नहीं है, क्या है ये? ये शांतिपुर है, और जहां आप स्नान कर रहे हो यमुना नहीं है, क्या है? गंगा है। तो तभी गंगा को देखकर यमुना सोच के चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र गाया वो हम लोग यमुना आरती में गाते हैं, चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री परक्षेम धात्री पवित्री क्रियान्नो बपुर मित्र पुत्री। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यमुना देवी का मंत्र जाप करके छलांग लगाकर साक्षात सानिध्य प्राप्त किया हमारे अद्वैत आचार्य जी का, तो अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु को कहते हैं अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या करें, आप आ ही गए हो। प्रभु को है नित्यानंद आमारे बांछिला गंगा के आनिया मोरे जमुना कहिला। नित्यानंद प्रभु ने ठग दिया मुझे, गंगा में लेके आ गए यमुना बोल के। तब तुरंत अद्वैत आचार्य कहते हैं गंगा ये यमुनाए बहे होए एक धार पश्चिमे जमुना बहे पूर्वे गंगाधार। श्री चैतन्य महाप्रभु, आपको पता नहीं क्या, प्रयागराज संगम तक गंगा और यमुना चलते चलते जब एकत्रित होकर संगम बनते हैं, तब उसके आगे जब वो आगे चलते हैं तो संगम के आगे कलकत्ता तक गंगा के पश्चिमी तट को यमुना कहते हैं, पूर्वी तट को गंगा कहते हैं। तो आप पश्चिमी तट में आए ना, यमुना ही तो है। तो फिर अद्वैत कहते हैं, प्रभु आप और नित्यानंद प्रभु दोनों यहाँ आए हो, आप कृपा करके हमारे घर पर भोजन के लिए आइए। मैंने आपके लिए भोजन के लिए कुछ व्यवस्था की है, कुछ दो मुट्ठी अन्न बनाया है, ऐसा कहते हैं। तो तीन ठानी भोग को गड़ाइला समकोरी, कृष्णेर भोग बढ़ाइला धातु पात्रो परी। तो तीन प्लेट बनाए थे बड़े, 250-250-250 किलो के चावल, 750 किलो चावल बनाया था केवल गौर निताय के लिए। और क्या लिखते हैं, मध्य पीत घृत सिक्त साल्यन्यर स्तूप, चारिड के व्यंजन डोंगा आरमुग्ध सूप। जो विशालकाय पर्वतीय चावल, उच्च कोटि का चावल, उस चावल के ऊपर उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा बना दिया था, उसके अंदर स्वर्णिम रंग का घी, बड़ा ही आकर्षक घी, और वो घी पूरे उस चावल के अंदर सन गया था और चावल का हर कण बिल्कुल पीले स्वर्णिम रंग का लग रहा था, सुगंधित। लेकिन भूख लग रही है कि नहीं? और चारिड के व्यंजन, और चारों तरफ द्रोण के अंदर सुंदर सुंदर व्यंजन रख दिए थे, अलग अलग प्रकार के सब्जियां। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को अद्वैत अंदर लेके आते हैं। दुई प्रभु लैया आचार्य गेला भीतर गोरे, प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। इस विशाल प्रसाद को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के मन में आवेश उत्पन्न हो गया कि घर के राधा कृष्ण भगवान के लिए कितनी भव्य आयोजन यहां पे की है। शिला प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, इस्कॉन मंदिर क्यों चलाते हैं? किसी रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी अगर दुनिया के सभी लोग आपके जैसे हरे कृष्ण आंदोलन में आ गए तो दुनिया का क्या होगा? प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, तुम जैसे कई नालायक होंगे जो कभी नहीं आएंगे। एक कॉलेज स्टूडेंट को मैं लड्डू दिया, वो बोलता नहीं लूंगा। मैंने कहा, लड्डू नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? बोलता मुझे डर लगता है, मेरा हेयर स्टाइल भी आपके जैसा हो जाएगा। तो नौजवान नवयुवक जब कोई मंदिर में जाता है, माता पिता कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते, जब बोलता मैं इस्कॉन मंदिर जा रहा हूं, परिवार वाले बोलते बच करे बेटा, क्यों? यत गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाकर व्यक्ति सही सलामत लौट के नहीं आता, कुछ ना कुछ उसका बदल ही जाता है ना। मांसाहारी शाकाहारी, शाकाहारी कांदा लहसुन छोड़ देता है, कांदा लहसुन छोड़ा हुआ चाय कॉफी छोड़ देता है। तो इस तरह से कई सारी विडंबनाएं हो जाती हैं। तो जैसे ही ये तिलक लगा लिया, कंठी माला लगा लिया, समझ जाओ कि जीवन भर आप इस पृथ्वी पर माइनॉरिटी में रहोगे, छोटी सी माइनॉरिटी में जीवन बिताना पड़ेगा। अगर आपको विश्व के लगभग 750 करोड़ के ऊपर जनसंख्या के सामने एक छोटा सा 2-4 लाख के कम्युनिटी में रहने का ताकत है, तब जाकर आप लोग संकल्प लो हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ने का। अगर आपको लगता है नहीं नहीं इतनी पब्लिक के अगेंस्ट में अलग कैसे कर सकता हूं, दम नहीं है, तो जाओ। पूरी दुनिया जा रही है नरक की ओर विभिन्न प्रकार के दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से, तो हम कर सकते हैं वो, लेकिन जो मार्ग है भगवान नाम सत्संग, इसको पालन करना हो तो इसके लिए नियम बहुत कड़क है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए यहां पर इतने प्रचुर मात्रा में भोग लगाया था, उसको देखकर गौर नेताए दोनों प्रसन्न हो गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मंदिर हम इसलिए नहीं चलाते जिससे लोगों को मंदिर में भर्ती कर सके, हम मंदिर इसलिए चलाते हैं जिससे आप अपने घर को मंदिर बना सको। आप मंदिर में आते हो प्रेरणा लेने के लिए कि आप अपने घर को मंदिर कैसे बना सकते हो। और मंदिर कैसे बनाने का पहला पड़ाव ये नहीं कि मंदिर में भजन करो, घर में भजन करो, भजन तो बहुत दूर की बात है, घर में भले भजन हो न हो भोजन तो होगा। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले भोजन में परिवर्तन लाओ, जो घर में भोजन बने वो इस संकल्प के साथ बने ये भगवान कृष्ण के संतोष के लिए हो। जब इस संकल्प के साथ घर में भोजन बने उसको भोग कहते हैं, वो भोग जब भगवान को लगता है वो फिर बनता है प्रसाद, और केवल उस प्रसाद के सेवन मात्र से संपूर्ण परिवार की चेतना शुद्ध होने लगती है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के हाथ में हाथ मिलाकर अद्वैत आचार्य के इस महाप्रसाद वितरण के कार्यक्रम को देख के प्रसन्न होकर कहते हैं घर घर को मंदिर बनाने के लिए ये बड़ा ही सरल सूत्र हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ऐछे अन्न जे कृष्णा के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। इस प्रकार का अन्न जो कृष्ण को कराएगा, जन्मे जन्मे शिरे धरो, जन्म जन्मांतर के लिए मैं ऐसे भक्त के सर को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ये कितना आसान है, घर में जो भोजन बने भगवान को भोग लगाइए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य को इतनी प्रचुर मात्रा में आपने भोजन बनाया कौन पाएगा इसको। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं हम तो जानते हैं प्रभु आप तो जगन्नाथपुरी में ही 56 भोग ले लेते हो, ये तो क्या है। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, आज उपवास होइला आचार्य निमंत्रण अर्ध पेट न भरी बे एक ग्रास एक अन्य। नित्यानंद प्रभु कहते हैं सामने कितना किलो चावल है, 750 किलो, उसको देख के बोलते हैं क्या उपवास करा रहे हो, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, आधा पेट भी नहीं भरा। अद्वैत आचार्य कहते हैं आचार्य कहे तुम ही हो तैर्थिक सन्यासी, कबू फल मूल खाओ कबू उपवासी। अरे तुम तो यहां वहां भटकने वाले सन्यासी हो और आपका मिशन ही है गरीब गृहस्थों को परेशान करना, घर में घुस के प्रसाद लेने के एक्सक्यूज के साथ आकर हम लोग की आलोचना करना, यही तुम्हारा काम है। भ्रष्टावधूत तुम्हें उदर भोरिते सन्यासी लैया छे बुझी ब्राह्मण दंडिते। आप भ्रष्टावधूत हो, संन्यास लिया है केवल गृहस्थों को पीड़ा देने, अद्वैत कहते हैं नित्यानंद प्रभु को। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपने जो दिया, ले लो तुम्हारा अन्न। नित्यानंद प्रभु अन्न लेते हैं, जमीन पे पटकते हैं। वो जमीन से दो अन्न जाकर अद्वैत को जब लगता है तो उनको भगवत प्रेम का करंट लगता है, वो नाचने लगते हैं। भात दुई चारी लागे आचार्य रंगे, भात अंगे लैया आचार्य नाचे बहुरंगे। अरे ब्राह्मण को झूठा लगा, झूठा लगने पर तो वो स्नान करेगा, लेकिन अद्वैत आचार्य नाचने लगे। और क्या कहते हैं, अवधू तेरे झूठा लागिला मोरा अंगे, परम पवित्र मोरा कोयला ऐ ढंगे। अरे नित्यानंद प्रभु अवधूत ने मुझे शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। इसका अर्थ क्या है, वैष्णवों का उच्छिष्ट झूठा नहीं माना जाता। भक्त पद धूलिया आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का पाद प्रक्षालित जल और भक्तों का अवशेष, ये तीन महाबल है। और इसलिए महाप्रसाद की बड़ी शक्ति है। प्रभुपाद जी ट्रेन में बैठे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। एक भक्त को जब लड्डू देने लगे, वो भक्त पूछता है, प्रभुपाद ये ऑफर्ड है क्या? प्रभुपाद ने कहा तू मत खा, प्रभुपाद दे रहे हैं और वो पूछ रहा है। प्रभुपाद फ्लाइट में थे, प्रभुपाद के सर्वेंट ने प्रभुपाद जी के लिए कुरमुरा निकाला, तभी एयर होस्टेस वहां से आई। प्रभुपाद कुरमुरा खा रहे थे, एयर होस्टेस प्रभुपाद के प्लेट का कुरमुरा देख के बोलती है, अरे ये तो अद्भुत चीज है, कभी देखा ही नहीं मैंने, और सीधा हाथ डालती है कुरमुरा पे, प्रभुपाद के प्लेट से उठा के खा लेती है। तो भक्त लोग भी घबरा गए, हम लोग भी महाप्रसाद लेते हैं लेकिन प्रभुपाद के खाने के बाद, ये तो खाते खाते हाथ मार ली। लेकिन उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो गई और प्रभुपाद के लिए गर्म दूध और फल और लेके आई। प्रभुपाद का महाप्रसाद लेते ही साथ सेवा भाव आ गया। ये 1972-73 की बात है, 15-16 साल के बाद एक भक्त हरिनाम करते हुए साउथ अमेरिका में चिली में गए और वहां पर घर में खटखटाए, एक महिला ने खोला, तिलक लगाई थी, बोली मैं एयर होस्टेस थी, उस समय प्रभुपाद का महाप्रसाद खाई, उसके बाद मैं अपने देश में आकर भगवद गीता मुझे मिला, डिवोटी बन गई, घर पे गौरनित आया है। भक्त भुक्त अवशेष यही तीन महाबल। तो इसलिए यहां पर अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के द्वारा धरती पर फेंका हुआ उस अन्न के स्पर्श से अपने आप को पवित्रीकृत अनुभव करते हैं। अद्वैताचार्य कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, तोरे निमंत्रण करी पाइनु तारा फल, तोर जाति कुल नाही सहजे पागल। मैंने तुम जैसे अवधूत को निमंत्रण देके उसका फल पाया है। अद्वैताचार्य कहते हैं तोरे जाति कुल नाही, तुम्हारा ना कोई जाति है ना कुल है, पहले ही पागल हो। और मेरे ऊपर ये अन्न स्पर्श करके आप क्या कर रहे हो, आपना रसम मोरे करी बार तोरे झूठा दिले विप्र भोली भय ना करिले। मैं ब्राह्मण हूं इस बात का भी भय नहीं और झूठा मुझ पे फेंक रहे हो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब दो परमहंस भक्तों के बीच कुछ वाद विवाद हो तो बाकी लोग केवल दर्शक ही बनना, बीच में कोई प्रवेश करने का प्रयास करेगा, भस्मीभूत हो जाएगा। तब अद्वैत आचार्य की बातों को सुनकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं, नित्यानंद बोले, ए कृष्णेर प्रसाद, इहा के झूठा कोहिले तुमी कोइले अपराध। ये कृष्ण का प्रसाद है, उसको तुमने झूठा कहा, अद्वैता अपराधी हो तुम। सत्य को सन्यासी यदि करह भोजन, तबे यही अपराध होइबे खंडन। अब इस अपराध का शोधन कैसे होगा? 100 सन्यासी को खिलाना पड़ेगा फीस्ट, तब जाके मुक्त होंगे इस अपराध के फल से। आचार्य कहते, आचार्य कहे न करिब सन्यासी निमंत्रण, सन्यासी नाशिला मोरा सब स्मृति धर्म। जिंदगी में कभी सन्यासी को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा, आपसे जो पाला पड़ा मेरा सारा जाति कुल धर्म नष्ट हो गया। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर प्रसाद पाए, आदान प्रदान किया। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री सती माता कहती हैं, बेटा आप कभी संन्यास लेने के बाद मेरे निकट नहीं आए। बाचारे निमाय विश्व रूप समन कोरिह निठुराए, सन्यासी होइया पुन न दिला दर्शन, तुमी मोर कैचे कोइले होइबे मरण। सन्यास लेने के पश्चात विश्वरूप कभी मेरे निकट नहीं आए, आप भी ऐसे सन्यासी बनने के बाद मुझसे दूर चले गए तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी इच्छा है वृंदावन जाने। सची माता ने कहा, मेरी इच्छा है तो नवद्वीप में रहो। महाप्रभु ने कहा, अगर मैं नवद्वीप में रहूंगा तो लोग उपहास करेंगे, आलोचना करेंगे कि सन्यास के बाद भी घर के अंदर ही बैठा रहा। वो आलोचना आपको बहुत भारी पड़ेगी। तो सची माता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी योजना है वृंदावन, मेरी योजना है नवद्वीप, कॉम्प्रोमाइज करते हैं थोड़ा, जगन्नाथपुरी में रहो। जो कि जगन्नाथपुरी वृंदावन जितना दूर भी नहीं, और भक्त लोग आते जाते रहते बंगाल से। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योजना बदलकर जगन्नाथपुरी में रहने का निश्चय किया। आचार्य रे श्रद्धा भक्ति गृह संपत धने, सकल सफल होइल प्रभुर आराधने। अद्वैत आचार्य की श्रद्धा भक्ति घर संपत्ति धन सब कुछ सफल हुई प्रभु की आराधना में, प्रभु की आराधना में ये सफल हुई। तो ये चैतन्य महाप्रभु के संपूर्ण वृंदावन की योजना को जगन्नाथपुरी की योजना बनाने में सबसे बड़ा हस्ताक्षेप किसका था? नित्यानंद प्रभु का था, जो चैतन्य महाप्रभु के मार्ग को ही बदल दिए। क्यों बदल दिए? क्योंकि नित्यानंद प्रभु इस बात को जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिना पर्याप्त मात्रा के चेतावनी देने, पूर्व सूचना दिए संन्यास ले लिए। इतने अचानक तात्कालिक रूप से संन्यास लिया कि नवद्वीप के सारे भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह के सदमा में पागल हो रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु निकट भविष्य में अगर बंगाल नहीं गए और उन भक्तों का अपना स्नेहिल अनुरागमय सत्संग नहीं दिए, वो सभी अपना शरीर त्याग देंगे। तो नित्यानंद प्रभु उस वैष्णव समुदाय के संरक्षण हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पश्चात वृंदावन ब्रजभूमि के उनकी योजना को बदलकर बंगाल की ओर उनको लेके गए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला कि नित्यानंद प्रभु 20 वर्ष तक भ्रमण कर रहे थे, तब जाके चैतन्य महाप्रभु उनको मिले। और मिलने के कुछ वर्षों के बाद ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए। और जगन्नाथपुरी में आते ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रतिवर्ष नीला चले तुमी न आसीबा, गौडर हे मोर इच्छा सफल कोरिबा। नित्यानंद, हर वर्ष बंगाल के सभी भक्त रथ यात्रा के लिए आएंगे, लेकिन आप नित्यानंद प्रतिवर्ष रथ यात्रा में नहीं आओगे। 1516 से लेके 1534, 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे। उन 18 वर्षों में हजारों हजारों भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का संग लाभ लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु केवल पहले वर्ष आए। आगे के 17 वर्ष नित्यानंद प्रभु बंगाल में थे, चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे। बंगाल से पुरी एक रात्रि का एक फासला है। नित्यानंद प्रभु 7-17 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु के विरह में ही रहे, लेकिन फिर भी हम गौर निताय को दोनों एक साथ ऑल्टर पर देखते हैं, क्योंकि दोनों मिशन में एक हैं। पुरी में साथ नहीं रहे, जितना समय दोनों को साथ रहना था उतना नहीं रहे, लेकिन हृदय एक था। तो ये हृदय का एकात्म, योजनाओं का एकात्म, आदेश का एकात्म, ये वास्तविक शक्ति है। और नित्यानंद प्रभु ने अपने ज्वलंत उदाहरण से एक उत्कृष्ट सेवक कैसे होना चाहिए इसका उदाहरण दिया, जो हमने कल सुंदर श्लोक के माध्यम से चर्चा की। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। सर्वरूपे आस्वादये, हर प्रकार के हर रूप में आस्वादन किया कृष्ण सेवानंद, कृष्ण की सेवा का आनंद। श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद, श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में भी नित्यानंद प्रभु बलराम जी साक्षात उनकी इच्छा को पूर्ण करने में लगे थे। यह है कृष्ण सेवानंद। 17 वर्ष हजारों भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के निजी व्यक्तिगत सानिध्य में आनंद लूट रहे थे, कीर्तन के आमोद प्रमोद में भाव विभोर थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वर्णिम अंग कांति का दर्शन कर रहे थे, उनके जाज्वल्यमान देह को देख रहे थे, उनकी कृष्ण भक्ति की लहर को अनुभव कर रहे थे। लेकिन वो 17 वर्ष श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को मस्तक पर धारण कर बंगाल में केवल प्रचार कर रहे थे। इसलिए भक्ति का अर्थ ये नहीं कि मच्छर की तरह किसी के आसपास मंडरा हो। कई बार हमसे सबसे निकट मच्छर होता है, जो नालायक खून चूसता है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि किसी के निकट रहना। नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, कृष्ण की सेवा में आनंद लेना, कृष्ण की सेवा की इच्छा करना। श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करने में, उनके विरह में रहकर प्रचार करते हुए उस आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तो नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ पर्व पर हम श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे स्वामियों के दिए गए भक्ति के आदेश को, सेवा के आदेश को हम पालन करने का सामर्थ्य रखें, शक्ति रखें, आत्मविश्वास रखें, बल रखें, इच्छा रखें, संकल्प विवेक शक्ति धारण करें। ये बल है जो दिया जाता है, और इसलिए हम ये सारे उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उन उत्सवों के दिन भिक्षुक की भांति इन विभूतियों के सामने हम लोग अपने रिक्त हथेलियों और विनम्र भावनाओं के साथ याचना करते हैं कि कृपा के दो बूंद हमें दें, जिससे हम भी रंच मात्र कुछ सेवा और भक्ति करने का प्रयास कर सकें। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के बड़े आभारी हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत को बंगाली से अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया, जिससे कि श्री नित्यानंद तत्व के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी हम सभी को मिली। आप सभी यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज शनिवार और रविवार के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, कृतज्ञता, और आशा है कि आप लोग सभी अपने अपने जीवन में साधना, सेवा, भक्ति, संबंध बनाए रखोगे और श्री नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से अपनी भक्ति को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते चले जाओगे। इन प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की। तो चलिए हम लोग चलते हैं यमुना आरती के लिए। ताई गो प्रेमानंदी।